रेडियो नेपाल है। अब सीमा शर्मा से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। आगामी फागुन 21 गते होने वाले प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन के लिए समानुपाती की ओर मतपत्र की कल से होगी छपाई शुरू। नेपाली सेना द्वारा आगामी फाल्गुन 21 गते को होने वाले प्रतिनिधि सभा सदस्य चुनाव के लिए 80,000 जनशक्ति का परिचालन। नेपाल पुलिस द्वारा 1,33,000 से अधिक चुनावी पुलिस की भर्ती का आह्वान और संयुक्त राष्ट्र जलवायु समझौते से बाहर निकलने की अमेरिका की घोषणा खेदजनक है। यूरोपीय संघ की टिप्पणी। अब समाचार विस्तार से। आगामी फागुन 21 गते होने वाले प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन के लिए समानुपातिक की ओर मतपत्र की छपाई कल से शुरू होगी। समानुपातिक प्रणाली की ओर से सफेद कागज पर काली स्याही और प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की ओर से लाल स्याही का प्रयोग किया गया है। यह जानकारी आयोग के सूचना अधिकारी सुमन घिमिरे ने दी। इसी तरह प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन के मतदाता शिक्षा प्रयोजन के लिए करीब 10,00,000 थान नमूना मतपत्र छपाई की गई है। यह जानकारी सूचना अधिकारी घिमिरे ने दी है। बता दें कि नेपाली सेना की सुरक्षा घेरे में सानोठिमी स्थित जनक शिक्षा सामग्री केंद्र लिमिटेड में नमूना मतपत्रों की छपाई की गई है। नेपाली सेना ने आगामी फागुन 21 गते होने वाले प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन के लिए 80,000 जनशक्ति परिचालन करने की तैयारी किया है। नेपाली सेना के सहायक रथी एवं प्रवक्ता राजाराम बस्नेत ने कहा है कि निर्वाचन के संदर्भ में एकीकृत सुरक्षा योजना 2082 अनुमोदन होकर राष्ट्रपति से भी स्वीकृत हो चुकी है, इसलिए उसी अनुसार फौज परिचालन किया जाएगा। एकीकृत सुरक्षा योजना सरकार से अनुमोदन और सेना के परिचालन के संबंध पर राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद से भी स्वीकृति हो चुकी है। निर्वाचन के सिलसिला में सेना ने भी 3 चरणों में काम करेगी। निर्वाचन पूर्व के मुख्य जिम्मेदारी मतपत्र छपाई, सुरक्षा से महत्वपूर्ण संरचना के सुरक्षा का जिम्मेदारी सेना ने वहन करेगी। नेपाल प्रहरी ने आसन्न प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन के लिए 1,33,980 निर्वाचन प्रहरी म्यादी का भरना आह्वान किया है। प्रहरी प्रधान कार्यालय ने आज सूचना जारी करके इच्छुक योग्यता पहुंचे उम्मीदवार को भरना प्रक्रिया में सहभागी होने के लिए सूचित किया है। निर्वाचन प्रहरी के लिए इसी पूस 25 गते से आगामी माघ 1 गते तक 77 जिलों में प्रहरी कार्यालय में दरखास्त दे सकते हैं। दरख्वास्त फार्म दर्ता के अंतिम मिति तक 18 वर्ष पूरा होकर 54 वर्ष पार नहीं होना चाहिए। यह जानकारी प्रहरी प्रधान कार्यालय ने दी। प्रधानमंत्री सुशीला कार्की और नेकपा एमाले के अध्यक्ष केपी शर्मा ओली के बीच चुनाव केंद्रित चर्चा हुई है। प्रधानमंत्री निवास बालवाटार में आज हुई मुलाकात में प्रधानमंत्री कार्की और अध्यक्ष ओली के बीच फाल्गुन 21 गते के चुनाव को भयमुक्त और निष्पक्ष ढंग से संपन्न कराने के विषय में चर्चा हुई। यह जानकारी प्रधानमंत्री के सचिवालय ने दी। मुलाकात में अध्यक्ष ओली ने चुनाव को भयमुक्त, स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से संपन्न कराने की सुरक्षा व्यवस्था के बारे में चिंता जताई। यह जानकारी प्रधानमंत्री के प्रवक्ता राम बहादुर रावल ने दी है। प्रवक्ता रावल ने बताया कि यह वार्ता चुनाव संपन्न कराने पर केंद्रित थी, साथ ही वर्तमान राजनीतिक विषयों पर भी सामान्य चर्चा हुई। प्रधानमंत्री सुशीला कार्की से राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी राप्रपा के अध्यक्ष राजेंद्र लिंगदेन ने भेंट वार्ता की। राप्रपा द्वारा इसी पूस 27 गते पृथ्वी जयंती के अवसर पर आयोजित चाय पान के आमंत्रण देने प्रधानमंत्री निवास बालवाटार में आज शाम हुई भेंट में प्रधानमंत्री कार्की और राप्रपा अध्यक्ष लिंगदेन के बीच देश की समसामयिक राजनीतिक परिस्थिति सहित आगामी चुनाव पर चर्चा हुई। यह जानकारी राप्रपा के प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठ ने दी। गृहमंत्री ओम प्रकाश अर्याल ने कहा है कि संविधान की रक्षा के लिए निर्वाचन अनिवार्य शर्त है। आज मानवाधिकार संगठन और अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केंद्र इनसेक द्वारा काठमांडू में आयोजित लोकतंत्र के स्थायित्व के लिए निर्वाचन सहभागिता शीर्षक के कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि संविधान की रक्षा और लोकतंत्र के स्थायित्व के लिए निर्वाचन अनिवार्य है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रतिनिधि माया शर्मा ने कहा कि लोकतंत्र के स्थायित्व के लिए एकमात्र विकल्प निर्वाचन है। नेपाल पत्रकार महासंघ की अध्यक्ष निर्मला शर्मा ने कहा कि निर्वाचन के वातावरण बनाने के लिए मीडिया ने सहयोग किया है। समाचार रेडियो नेपाल से प्रसारित किए जा रहे हैं अब कुछ देर विज्ञापन।
हजुर दर्शन
भाग्यवानी बाबु राम्ररी आइपुग्नु भयो नि।
हजुर राम्ररी पुगे। ऊ चाहिँ मेरो कलेजको बेस्ट फ्रेन्ड।
नमस्ते बाबुजू।
नमस्ते आउनु न भित्रै।
हुन्छ बाबुजू।
अनि दादा त अफिस गइसक्नु होला है?
उहाँ त बिहानै हो। हुन्छ तपाईँहरू फ्रेस हुँदै गर्नु न, म खाना तयार गर्दै गर्छु है।
हस् हस् बाबुजू।
ओए वाइफाई होला नि, पासवर्ड माग्न।
हे त पनि एनटीसी को सस्तो डे प्याक छँदैछ नि।
ए हो र,
एनटीसी को डे प्याक लिन *1415# डायल गर्न।
नेपाल टेलिकम राष्ट्रको संचार।
अब बाँकी समाचार। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी रासोपा के सभापति रवि लामिछाने ने कहा है कि कल ही मंत्री पद से इस्तीफा दिए कुलमान घिसिंग के साथ किए गए सहमति को अब पार्टी प्रक्रिया मार्फत औपचारिकता देने की तैयारी हो रही है। आज चितवन जिला अदालत में उपस्थित होकर लौटने के दौरान पत्रकारों के साथ बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार में रहते समय में ही हम लोग सहमति किए थे, अब उन्होंने इस्तीफा देकर आए हैं, इसलिए सहमति को पार्टी द्वारा औपचारिकता देने का काम शुरू होगा। राष्ट्रपति रामचंद्र पौड़ेल से नेपाल के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के राजदूत डीन आर थॉम्पसन ने आज विदाई भेंट की। राष्ट्रपति भवन में हुई इस भेंट में दोनों के बीच नेपाल अमेरिका संबंधों के साथ साथ पारस्परिक हित और रुचि के विषयों पर चर्चा हुई, ये जानकारी राष्ट्रपति कार्यालय ने दी। राष्ट्रीय सभा के अंतर्गत विधायन प्रबंधन समिति ने पर्यटन विधेयक 2081 पर सरोकार वाला निकायों के प्रतिनिधियों से सुझाव लिए हैं। समिति की आज हुई बैठक में नेपाल पर्वतारोहण संघ, होटल एसोसिएशन नेपाल, कैसिनो व्यवसायियों तथा पर्यटन क्षेत्र के विशेषज्ञों ने पर्यटन विधेयक 2081 पर अपने सुझाव प्रस्तुत किए। बैठक में नेपाल पर्वतारोहण संघ के अध्यक्ष फूर ग्यालजे शेर्पा ने पर्यटन क्षेत्र को सुगम बनाने के लिए विधेयक में मौजूद प्रावधानों में संशोधन का सुझाव दिया। जिला प्रशासन कार्यालय बांके ने मां के नाम से पहली बार नागरिकता प्रदान किया है। प्रमुख जिला अधिकारी दिल कुमार तामांग ने नागरिकता एन 2063 के दूसरी संशोधन तथा नियमावली के चौथा संशोधन बमोजिम नेपालगंज उपमहानगरपालिका वार्ड नंबर 8 अंसारी टोल निवासी 24 वर्षीय मोहन गोड़िया को आज वंशज के आधार पर नागरिकता प्रदान किया है। प्रमुख जिला अधिकारी तामांग के अनुसार गोड़िया को उनकी 46 वर्षीय मां माया कुमारी गोड़िया के नाम से नागरिकता प्रदान किया है। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। यूरोपीय संघ के जलवायु प्रमुख ने स्पष्ट किया है कि अमेरिका द्वारा संयुक्त राष्ट्र जलवायु समझौते से बाहर निकलने की घोषणा के बावजूद यूरोप विश्व तापमान वृद्धि से लड़ने हेतु अन्य राष्ट्रों के साथ सहयोग जारी रखेगा। यूरोपीय संघ के जलवायु आयुक्त वोपके होक्स्ट्रा ने गुरुवार को प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा जलवायु परिवर्तन संबंधी संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन सहित दर्जनों अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और समझौतों से अमेरिका के बाहर निकलने का निर्णय सार्वजनिक करने के बाद भी यूरोपीय की प्रतिबद्धता कमजोर नहीं होगी। सन 1992 में पारित यूएनएफसीसी समझौता हरितगृह गैस उत्सर्जन कम करने, विश्व तापमान नियंत्रित करने तथा जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के साथ अनुकूलन हेतु राष्ट्रों को सहयोग के लिए एक साझा आधार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किया गया एक विश्वव्यापी समझौता है। आयुक्त होक्स्ट्रा ने कहा कि यूएनएफसीसी ने वैश्विक जलवायु कार्य को समर्थन देने वाली आधारशिला की भूमिका निभाई है और अमेरिका इससे पीछे हटना अत्यंत दुखद एवं दुर्भाग्यपूर्ण है। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 15 से 17 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 2 से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 16.1 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। आगामी फागुन 21 गते होने वाले प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन के लिए समानुपाति की ओर मतपत्र की कल से होगी छपाई शुरू। नेपाली सेना द्वारा आगामी फागुन 21 गते को होने वाले प्रतिनिधि सभा सदस्य चुनाव के लिए 80,000 जनशक्ति का परिचालन। नेपाल पुलिस द्वारा 1,33,000 से अधिक चुनावी पुलिस की भर्ती का आह्वान और संयुक्त राष्ट्र जलवायु समझौते से बाहर निकलने की अमेरिका की घोषणा खेदजनक है, यूरोपीय संघ की टिप्पणी। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभरात्रि।